ओम शांति। तो हम सब पर भगवान की कितनी मेहरबानियां हुई है, गीत में हम सबने सुना, ज्ञान की संजीवनी बूटी देकर हम सबके जीवन में खुशियों की बहार ला दी, जो अंदर में मन के अंदर में अनेक प्रकार के उलझने थी, पीड़ाएं थी, दर्द थे, वो सारे हर लिए। तो हम सबका कितना पद्मापद्म सौभाग्य है कि स्वयं भगवान हमारा चिकित्सक बनकर आया है, डॉक्टर बनकर आया है, सुप्रीम सर्जन, जो हमें जन्मों जन्म तक निरोगी बना देता है। और सबसे बड़ी बात तो है इस ब्राह्मण जीवन में उसकी हम अनुभूति करते हैं, और वो प्रैक्टिकल हम स्वयं परिवर्तन स्वयं में महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कैसे परिवर्तन आता जा रहा है, चाहे वो हमारे संकल्पों में है, चाहे वो हमारी दृष्टि में है, वृत्ति में है, कृति में है, सोच में है, सब महसूस करते हैं कि कितना परिवर्तन आ गया। एक दिशाहीन जीवन जी रहे थे, लेकिन भगवान ने हम सबको आकर दिशा दे दी, जीवन का महत्व समझाया कि वास्तविक जीवन क्या होता है। देवताओं से भी उत्तम जीवन, जिनकी पालना स्वयं भगवान करता है। कल का स्लोगन था ना, दुआओं में उड़ते रहो पलते रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो ब्राह्मण जीवन जो दुआओं से भरपूर जीवन है, जितनी चाहे हम उतनी दुआएं जमा कर सकते हैं, और ये जो दुआएं हैं ये हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाती हैं। जो सूक्ष्म पापों का बोझा होता है, अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब होता है, जहां दवाई काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं। तो कदम कदम पर हम कितनी दुआएं जमा कर रहे हैं वो हमें स्वयं का निरीक्षण करते रहना चाहिए। और दुआएं जमा करने के बाबा ने बहुत सरल तरीके, बहुत सरल उपाय बताए हैं। किसी को दो मीठे बोल ही बोल दो, कहते हैं ना, अगर गुड़ नहीं दे सकते तो कम से कम गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। लेकिन वो मधुर बोल बोलने के लिए भी हमारे अंदर में उतनी मधुरता की शक्ति होनी चाहिए। माधुर्य का जो सागर है, स्वीट का पहाड़, बाबा कहते हैं ना, मैं स्वीट का पहाड़ हूं। अगर हम स्वीट के पहाड़ की छत्रछाया में रहेंगे तो हमारे में वो मिठास आएगी। सारे दिन में हमें कौन कौन सी स्मृति रहती है उसके ऊपर आधारित है वो। अगर हमें देहधारियों की स्मृति है या अपने ही संस्कारों में उलझे हुए हैं, पुरानी बातों की स्मृतियां मन में दौड़ रही हैं, तो मिठास आती नहीं है फिर वो स्मृति। जितना हमारी समर्थ होगी, शक्तिशाली होगी, सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, प्योर होगी, उतना हमारे में वो मिठास आती जाएगी। तो निरंतर दुआएं जमा करने का तरीका हमें बाबा बताते रहते हैं, मीठे बोल बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, बहुत सहज युक्तियां बताते हैं। बाबा कहते हैं, योग नहीं लगता है कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं सुना सकते कोई बात नहीं, सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दुआएं दो दुआएं लो, एक काम करो, सवेरे से लेकर शाम तक एक ही काम करो, दुआएं दो दुआएं लो। दुआएं भी हम तब दे सकते हैं जब हमें अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाने की कला होती है। अगर हमारे में वो विशेषताएं हैं, गुण हैं जो भगवान द्वारा प्राप्त हुए हैं, वो भी हमको अगर स्मृति में रहते हैं और उसी के अनुसार हम दूसरों के साथ संबंध संपर्क में व्यवहारिकता में आते हैं, वैसे हमारे वाइब्रेशन दूसरों को अनुभव होते हैं, तो स्वतः ही हमारे दुआओं का खाता बढ़ता जाता है। और दुआएं कई बार ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियों में इंसान फंस जाता है, उसमें दुआएं काम करती हैं। कई बार जा रहे हैं रोड पर, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन आदमी बच जाता है बार बार, किसी को जरा भी खोंच नहीं आती है, दुआएं काम करती हैं। जैसे परसों एक ट्रेन हादसा हुआ, सबने सुना होगा, तो एक बाबा का बच्चा था, वो ट्रेन में उसी ट्रेन में जाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा पहले उसको टचिंग हुई, इसमें नहीं जाता, थोड़ा बाद में जाता हूँ, तो दूसरी ट्रेन में गया, वो बच गया, दुआएं काम की, जो समय पर टचिंग होगी, मन बुद्धि को खाली रखा, जो भगवान की टचिंग समय पर होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अंत में मैं तुम बच्चों की सुरक्षा करूँगा, लेकिन कब, जब हमारी बुद्धि बाइसलेस होगी, विकारों से रहित, पवित्र होगी, शुद्ध होगी, लंबे समय से बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तो टचिंग यथार्थ होगी और हम अनेक प्रकार की परिस्थितियों से स्वतः बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां तो अंत तक आती रहेंगी, हमारा पीछा करती रहेंगी, लेकिन परिस्थितियों से हम घबराएंगे नहीं। जैसे होशियार स्टूडेंट होता है, जितना मर्जी कठिन प्रश्न पत्र हो लेकिन घबराता नहीं है वो, उसको हर मेथड का पता होता है। तो बाबा भी हम सबको समय समय पर अनेक तरह की युक्तियां बताते हैं कि कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं समय पर ज्ञान का याद आना, इसको ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। तो ज्ञान में अपने मन बुद्धि को बिजी रखना है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो बड़े ते बड़े बिजनेसमैन। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में उनके अंडर में वर्कर काम करते हैं, उनकी आजीविका चलती है। हम सब कौन है? पूर्वज हैं, इस सृष्टि में बड़े ते बड़े बिजनेसमैन हैं, तो हमारे से सारी सृष्टि की पालना हो रही है, एक एक पत्ते तक हमारे संकल्पों की शक्ति पहुंचती है। बाबा कहते हैं तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो, जो नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं वो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो हमें अपने संकल्पों की कीमत को समझना होगा। साधारणता में, व्यर्थ में हमारी अगर संकल्प शक्ति जा रही है तो दूसरी आत्माओं का क्या होगा, और उससे पहले हम स्वयं ही कमजोर अपने को अनुभव करेंगे। इसलिए एक एक संकल्प हमारा बड़ा कीमती है, वैल्यूएबल है। बाबा कहते हैं जो बच्चे समय के महत्व को जानते हैं, वैल्यू को जानते हैं, उनका हर संकल्प वैल्यूएबल होता है, हीरे तुल्य होता है। हीरे को साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता है, तो हमारा हर संकल्प हीरे तुल्य संकल्प है। जिस हीरे रूपी संकल्प की चमक पूरे संसार को प्रकाशित करती है, तो हमें अपने महत्व को समझना है कहीं ना कहीं हम अपने महत्व से विमुख हो जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर साधारण संकल्पों की संरचना में ही हमारा जीवन बीत जाता है। सवेरे से शाम तक हम आज ही सोच रहे थे कितने संकल्प ऐसे चले जाते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। आज के प्रधान में था ना, जो त्रिकालदर्शी बच्चे हैं व्यर्थ और साधारण से भी मुक्त होंगे। व्यर्थ संकल्प तो बड़ी बात है, लेकिन साधारण संकल्प भी नहीं होने चाहिए। देवताओं से भी उत्तम जीवन, तो संकल्प कितने उत्तम होने चाहिए हमारे, उसकी गुणवत्ता, उसमें कितनी शक्ति होनी चाहिए। उस संकल्प का बल हर आत्मा को बलवान बनाए, ताकतवान बनाए, शक्तिशाली बनाए, क्योंकि शक्तिशाली संकल्प करना सब आत्माओं के बस की बात नहीं है, वो केवल हम बाबा के बच्चों की बस की बात है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान का साथ केवल हम सब आत्माओं को मिल रहा है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से तो भक्तों को ही मिलता है, लेकिन हम साथ का अनुभव करते हैं। इसलिए हमारे संकल्पों में जो बाबा शक्ति भरता है, वो संसार की आत्माओं में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि वो हैं भगत आत्माएं और हम हैं बच्चे हैं, अधिकारी हैं। वो मांगते हैं लेकिन हम अधिकार रखते हैं उसके ऊपर। तो हम संसार के लिए, जैसे हमारा जीवन एक संजीवनी बूटी की तरह है, जैसे बाबा के ज्ञान का हर बिंदु हमारे जीवन के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करता है, ऐसे हमारा संकल्प संसार की हर आत्माओं के लिए संजीवनी बूटी का काम करे। बोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वर्तमान देखा भी जाता है, महसूस किया जाता है, चाहे वो ब्राह्मण जगत में है चाहे गैर ब्राह्मण जगत में है। अभी सुनने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। साइलेंस में रहने का सबका मन करता है, बोल बोल के भी थक गए हैं, सुन सुन के भी थक गए हैं, सुन हो गए, अभी क्या करना है, अभी साइलेंस का बल जमा करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बानप्रस्थ अवस्था है, कल की मुरली आने वाली सबकी बानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। और बानप्रस्थ अवस्था में अर्थात स्वीट साइलेंस होम की जो अवस्था है, उसमें बहुत शक्ति है, उसमें आत्मा तृप्त हो जाती है, भरपूर हो जाती है, लेकिन लंबे समय से उसकी आदत चाहिए, नहीं तो सारा दिन बाचा में बहुत बातें चलती हैं, फिर देखते हैं तो कितनी बातें व्यर्थ चली जाती हैं, कितनी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। और साइलेंस का बल भी ज्ञान के आधार पर पैदा होगा। वो अगर ज्ञान बुद्धि बीमारी में नहीं ठहरता है तो मौन रहने के लिए मन ही नहीं करेगा, फिर हम ढूंढेंगे इसके साथ बातें करें, उसके साथ बातें करें, क्योंकि आत्मा को रस तो चाहिए ना, और व्यर्थ बातों में भी रस तो होता है, लेकिन वो है दुख देने वाला, अल्पकाल का रस, लेकिन आत्मा अविनाशी है, उसे अविनाशी रस चाहिए, और वो स्रोत अविनाशी परमात्मा ही है। तो हमें स्वयं के जीवन का दिनचर्या में बार बार निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारी दिशा सही है या नहीं है, कहीं हमारा जीवन जो हीरे तुल्य है वो कौड़ी तुल्य तो नहीं बदला जा रहा है। पूरी नज़र स्वयं के ऊपर रखनी है। इसलिए बाबा ने क्या, बाप दादा को भी हंसी आती है कि विश्व परिवर्तक बच्चे और स्वयं का परिवर्तन नहीं कर पा रहे। अगर हम नज़र दौड़ाएं, जब से हमको ये जीवन मिला है ब्राह्मण जीवन, तब से लेकर अभी तक हमारा स्वयं के ऊपर कितना नियंत्रण अभी भी है, कितना हम कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप को, स्वयं की कर्मेंद्रियों के ऊपर कितना आधिपत्य है, कितना अधिकार है। जो सारे दिन में बाबा कहते हैं अगर बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो क्या देखते हैं, आज की मुरली में था ना, केवल मस्तक में चमकती हुई मणि को देखते हैं। तो आज ये दिन सारे दिन में हमको बहुत बार ये पॉइंट याद आया कि कितना विस्मृत हो जाते हैं, देह ही दिखाई देती है, भले कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होती हैं लेकिन देह को देखने की आदत भी बाबा कहते हैं धीरे धीरे वो अंश का वंश बन जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा 75% तो ठीक हो गए हैं, 25% बाकी है, ये भी हो जाएगा। बाबा कहते हैं 25 का 50% भी हो जाएगा। एक चिंगारी हमारे सारे जीवन का सत्यानाश कर सकती है, एक सूक्ष्म का अंश, सूक्ष्म अंश भी, चाहे वो दृष्टि पर नियंत्रण नहीं है, चाहे बोल पर नियंत्रण नहीं है, अगर मुख से एक भी ऐसा बोल निकल जाता है तो जैसे सारा पुरुषार्थ पानी में बह जाता है। तो कितना कदम कदम पर सावधानी रखना आवश्यक है। और हमने देखा अगर हम थोड़ी सावधानी रखते हैं तो बाबा की बहुत मदद मिलती है, और समय पर स्वयं की कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति भी प्रदान बाबा करते हैं। तो ये आंखें चंचल भी नहीं होती है, मन भी स्थिर रहता है, मुख में भी हमारा कंट्रोल रहता है, जहाँ जो बातें हमको नहीं सुननी चाहिए वहाँ भले हम खड़े रहते हैं लेकिन हमारे पर उनका असर नहीं होगा। अगर कोई व्यर्थ बातें करते हैं तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की हमारे में कला आ जाती है, उस बात को चेंज करने की कला। तो हम सबका जीवन बहुत वैल्यूएबल जीवन है, तो हमें सब बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस गति से समय हमको इशारा देता है, संसार की जो परिदृश्य है, संसार में जो दिखाई दे रहा है, संसार किस दिशा की ओर जा रहा है और संसार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्योंकि संसार की आत्मा हम सबका ही परिवार है, वो केवल 9 लाख नहीं है, जितनी भी आत्माएं संसार में है, चाहे वो मानव है चाहे वो जानवर है, सबके साथ हमारा जुड़ाव है, प्रकृति भी है। तो आज के मूल्य पर डिस्कस करेंगे। तो कौन सी जीवन में ऐसी बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं? हाँ, आज के मूल्य में ना बाबा कहते हैं दो बातें परेशान करती हैं, मैं और मेरापन। और ये बोले बिना रह भी नहीं सकते, बोलना तो पड़ता ही है, मैं भी बोलना पड़ता है, मेरा भी बोलना पड़ता है। तो कितना हमारा गहरी आसक्ति हो गई है, जैसे हम मैं बोलते हैं तो मन में कौन सी तस्वीर आती है? देह की आती है। मणि की कहाँ आती है? आत्मा की कहाँ आती है? आती है बड़ी धुंधली सी आती है। तो कितना प्रैक्टिस पर हमको अभी इतना प्रभुत्व जगाने की या जमाने की आवश्यकता है, कितना अभी एक गहरा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। और इसकी आदत तब पड़ेगी जब हम योग में बैठते हैं तो आधा समय केवल अपने को आत्मा ही समझो, और आत्मा समझते समझते परमात्मा अपने आप याद आएगा। अगर हम शरीर समझकर बैठते हैं तो बुद्धि भी देहधारियों की तरफ ही भागती रहती है, भले बैठे आए लेकिन कोई लौकिक रिश्तेदार याद आएगा, या कोई ऑफिस वाला याद आ जाएगा, या हमारे साथी याद आ जाएंगे, कोई दोतरे पोतरे याद आ जाएंगे जिनके साथ हमारी थोड़ी अटैचमेंट है। इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। कौन सी? मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ना, पिछले संडे भी कहा था, 3 बिंदी लगा दो, सारा खेल ही बिंदी का है, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ? कुछ नया वाला बताओ। सर्वश्रेष्ठ आत्मा और सर्वशक्तिवान, और कुछ नया, महान आत्मा। ये जो हमने पहले सुन रखे वो नहीं, कुछ नया था, क्योंकि बुद्धि को नया चाहिए। पुरानी बातें सुन सुन के उनका असर कहाँ होता है? उन पुरानी बातों को नया करके सुनाओ कुछ। हाँ, ये है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं मास्टर प्राणेश्वर आत्मा हूँ, सबके प्राण लेने वाली हूँ, नहीं अच्छा, सबको जीवन दान देने वाली हूँ। हाँ ठीक है, हाँ सबके प्राणों की रक्षा करने वाली हूँ मैं, मास्टर प्राणेश्वर आत्मा हूँ। देखो कितना अच्छा ये सुमान है, ऐसे और कोई नया सुमान बताओ। आज की मुरली से सोचो कुछ नया सुमान। अच्छा ये वर्ष कौन सा था? 17-12-94 कौन सा वर्ष था ये? शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष है ना। और ये 2023 ये कौन सा वर्ष है? 2023 ही है, सकारात्मक परिवर्तन वर्ष। हम भूल जाते हैं, जब मीटिंग हुई तो उसमें सुना, बाद में हम भी भूल गए थे, फिर अभी हम पूछ के आए। तो ये सकारात्मक परिवर्तन वर्ष है, क्योंकि जब भी कोई थीम निर्धारित किया जाता है तो बाबा उसमें बल भर देता है, ताकत भर देता है, क्योंकि उस थीम को सार्वजनिक रूप से उसी पर आधारित सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, चाहे वो सम्मेलन है, संगोष्ठियाँ हैं, सेमिनार है, तपस्या है, शिविर है। तो सकारात्मक परिवर्तन की ऊर्जा हमारे में तभी आएगी जब हमको उसका थोड़ा पता होगा। तो हमें इस यज्ञ में क्या कार्य चल रहे हैं, कौन सी गतिविधियां, उसका थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है। अगर हमको कोई पूछ ही ले और हम बता नहीं पाए तो क्या कहेंगे? बोलेंगे आप घर में रहते कि बाहर ही घूमते रहते हो। तो ये सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष है। तो ये जो मैं और मेरापन है, सारे दिन में कहाँ कहाँ आते हैं। मैं जब आता है हमारी बुद्धि में तो क्या क्या आता है जो हमको गिराता है? कौन सा मैं गिराता है? जैसे घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, है ना, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ। हाँ ओ ओ ओ मेरा वाला, ओ मेरा वाला, फिर दूसरी बार करेंगे, अभी केवल मैं पर ही। तो ये जो मैं बड़ा सूक्ष्म है ये, क्योंकि मैं आते ही बुद्धि में देह की तस्वीर घूमती रहती है, और देह की तस्वीर कब से घूमती रहती है? जब से हम होश संभालते हैं, चाहे वो शरीर का सौंदर्य है, चाहे वो मैं विशेषताओं से संपन्न हूँ, या मैं इस ब्राह्मण जीवन में अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ, मैं अच्छा सेवादारी हूँ, ये भी सूक्ष्म रूप से अभिमान हमको गिराता रहता है। इसलिए हमारे मनमोहिनी दीदी जी कहते रहते थे, जुक जुक मर मर सिख सिख। तो हमें इस जीवन में मरना है, मर जीवा जन्म है। बाबा कहते हैं अगर ये मैं आए जीवन में भी तो क्या आए? मैं भगवान की संतान हूँ, मास्टर प्राणेश्वर आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की आंखें हूँ, मैं नयनों का नूर हूँ, और हाँ जी परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। और साथ में इस सुमान के आगे चिंतन करना है, जैसे मैं भगवान की आंखें हूँ। अब इमर्ज कीजिए या सोचिए कि भगवान इस सृष्टि को कैसे देख रहा होगा और हम कैसे देख रहे हैं। तो मेरी आंखें भगवान की आंखें हैं, तो इन आंखों से मुझे कैसे देखना चाहिए सबको, सबकी विशेषताएं, सबके अनादि आदि संस्कार, सबके गुण, सबके अंदर जो शक्तियां समाई हुई हैं, सबके अंदर जो प्योरिटी है, सबके अंदर जो समर्पण भाव है, जो सेवा भाव है, वो हमको दिखाई देना चाहिए। अगर हमारे आंखों पर चश्मा वही पड़ा पहले वाला, तो सब वैसे देखते हैं कि सब साधारण ही है, ठीक है, जैसे है वैसे चल रहा है। फिर हम देखते हैं साधारण भाई है, साधारण माता है, ऐसे देखते रहते हैं। लेकिन भगवान की आंखें कैसे देखती हैं हमको, कितना फर्क हो जाता है। तो निरंतर ये सोचना है कि मैं भगवान की आंखें हूँ, और इन आंखों से परमात्म शक्तियों का निरंतर प्रकाश निकल रहा है, निरंतर परमात्म शक्तियों का करंट निकल रहा है, निरंतर परमात्म शक्तियों की वाइब्रेशन निकल रहे हैं, निरंतर परमात्म प्यार बरस रहा है, परमात्म प्योरिटी बरस रही है। एक एक कर्मेंद्रिय का शुद्धिकरण करना है, ने तो यही आंखें चंचल होती रहेंगी, यही आंखें हमको धोखा दे देंगी। बाबा कहते कहते हैं कर्मेंद्रियां धोखेबाज हैं बहुत, और सबसे ज्यादा धोखेबाज कौन सी हैं? आंखें। तो सबसे पहला काम हमको स्वयं की आंखों पर ही करना है। संकल्प फिर भी बाद में आएगा, पहले तो शरीर ही दिखाई देता है, और जैसे सीन देखा संकल्प चालू हो जाते हैं। अगर हमने दृष्टि से देखने का स्वभाव ही चेंज कर दिया, सकारात्मक कर दिया, तो हमारा चिंतन भी वैसा हो जाएगा। तो मैं और मेरा पेन, तो बाबा ने आज हम सबको डबल मुबारक दी। कौन कौन सी? नए वर्ष की और नवयुग की। तो दोनों में क्या अंतर बताया? नया वर्ष मनाते हैं तो कुछ तो नया भी होता है, लेकिन कुछ पुराना भी होता है, मीठा भी और नमकीन भी दोनों ही होता है ना, बैलेंस रहता है। हाँ जी, समय कुछ समय के लिए होता है वो, और अगले दिन फिर से पुराना चालू हो जाता है। लेकिन बाबा कहते नवयुग की मुबारक दी। नवयुग की मुबारक अर्थात सब कुछ नया। क्या नया? व्यक्ति भी नए, प्रकृति भी नई, शरीर भी नया, सब कुछ नया होगा। तो वो हमको बाबा ने जो कहा है वो हमको स्मृति में रखना है। तो उसी समय सोचना है कि नया शरीर है ये। जैसा हम सोचेंगे वैसे उसमें वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि शरीर का शुद्धिकरण बहुत अनिवार्य है। क्योंकि 24 घंटे हमको कहाँ रहना होता है? ये शरीर में। बाबा कहते हैं तन एक मंदिर है, संसार वाले भी लोग कहते हैं। तो जैसी हमारी स्मृति रहेगी, सोच रहेगी स्वयं के प्रति, सबसे पहला काम तो हमको स्वयं से करना। जो बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहला तो अपना ये वाला होम है, यहां से काम करना है। तो सारे दिन में अपने आप को शक्तिशाली, पौष्टिक, पवित्र संकल्पों से स्वयं का शुद्धिकरण करते रहना है। तो नवयुग अर्थात ये नया शरीर। बाबा कहते ड्रेस कहाँ टंगी हुई है? सामने खूंटी पर टंगी हुई है। तो अभी सभी अनुभव करो कि हम सभी देवता ही ड्रेस में बैठे हुए हैं। मेरे आसपास सब देवी देवता हैं, मेरे पास वाली माता भी देवता है, देवी है, भाई भी देवता है। आज दिन वाला याद नहीं करना कि दिन में तो उसने ऐसे वैसे कहा था और ये देवी दिखाई दे रही है, ऐसे नहीं। तो चलते फिरते अनुभव करना है। सब्जी काटते हैं तो सब देवियां सब्जी काट रही हैं, भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं गुरुवार का दिन किसी के लिए रखा हुआ है? देव बाबा की रमणीकता देखो। अब बाबा को खाने पीने से क्या है, वो तो हमको बाबा कितना बहलाते हैं, हमारा दिल लेते हैं कि बच्चों को अपना बनाने के लिए कुछ नवीनता चाहिए। नहीं तो बाबा का ज्ञान तो बहुत हैवी डोज वाला है, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन बुद्धि को बाबा पहले नरम करते हैं, ताकि उस नरम भूमि पर बीज अंकुरित हो जाए। अगर वो कलराठी जमीन है तो उस पर वो बीज अंकुरित नहीं होंगे। इसलिए बाबा हमको प्यार से, बाबा कहते गिफ्ट तो देते हैं लेकिन उस गिफ्ट से कोई इतनी प्राप्ति थोड़ी नहीं है, लेकिन स्नेह से तुम माला उस गिफ्ट से माला माल नहीं होते, लेकिन ये स्नेह है इस गिफ्ट में भरा हुआ। तो बाबा ने गुरुवार का दिन हमारे लिए रखा हुआ है, किस लिए? केवल खाने पीने के लिए। इस मुरली में तो ऐसे बोला ना कि मीठा खाने के लिए, मुख मीठा होने के लिए। वो फिर बाद में बताया, धीरे धीरे ज्ञान पर तो बाबा बाद में आए, लेकिन पहले बाबा कहते हैं दुनिया वाले कहते हैं श्रेष्ठ भाग्य जब होता है तो कहते हैं आपके मुख में गुलाब, लेकिन बाबा ने जामुन जोड़ दिया साथ में, और जामुन इन दिनों में मिलते हैं, जामुन दूसरे भी होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। बाबा कहते मीठा होता है, तो मीठा अर्थात मुखड़ा मीठा। फिर धीरे धीरे बाबा ज्ञान की तरफ, अपने आप को चेक करो कड़वे बोल तो नहीं है। तो हमारे जीवन में मिठास होनी चाहिए, मीठा सबको प्रिय लगता है। एक एक बोल में इतनी मिठास भर जाए कि दूसरा सुनते एकदम मीठा हो जाए, दूसरा सुनते एकदम घायल हो जाए, उसको महसूस हो कि सचमुच ये भगवान के बच्चे हैं, उसको महसूस हो कि सचमुच इनके आस पास आने से ही मुझे कुछ अनुभूति हो सकती है, मेरे समस्या का सॉल्यूशन मिल सकता है, समाधान मिल सकता है। तो हमारे जीवन में मिठास घुल जानी चाहिए। चाशनी में डूबे रहना, कौन सी चाशनी? ज्ञान की चाशनी में दिन भर अपने आप को डुबा के रखना है, बाहर निकलना नहीं है। और जो भी चाशनी के संबंध संपर्क में आएगा वो भी मीठा हो जाएगा फिर। तो एक सोमान ले लेना, कौन सा? मैं चाशनी हूं, भगवान के ज्ञान की चाशनी हूं, है ना। और चाशनी पर सब बैठते हैं, तो ऐसा हमारा जीवन हो जाए कि स्वयं भगवान ही हमारे ऊपर आकर बैठ जाए, उसका वरदान, उसका प्यार हमारी तरफ से हटे ही ना। जो बाबा कहते हैं ऐसा जीवन होना चाहिए कि योग टूटे ही ना। टूटे कैसे? इसकी विद्या हो जाए, टूटने नहीं चाहिए, निरंतर योगी बन जाओ। तो जीवन में इतनी मिठास घुली रहनी चाहिए। तो नवयुग की डबल मुबारक, और श्रेष्ठ भाग्य की मुबारक, और मस्तक मणि ये अभ्यास करना है। भले हम अकेले बैठे हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ से हम चले जाएंगे जैसे कमरों में, तो वहाँ बैठ के भी ये अभ्यास करना है कि हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठ के सबको मस्तक मणि, चमकती हुई मस्तक मणि देख रहे हैं। या अभी हम यहाँ बैठे हैं तो सभी माउंट आबू के बाजार में देखो जैसे मस्तक मणियाँ चमक रही हैं सब, है ना। क्योंकि वहाँ जाने से, हमारे स्थूल में जाने से कर्मेंद्रियाँ हलचल हो सकती हैं, लेकिन सूक्ष्म में कर्मेंद्रियाँ हमारी हलचल नहीं होंगी, क्योंकि हम देह को नहीं देख रहे। वहाँ कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, पता थोड़ी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हमको वहाँ कोई पहचान वाला मिलेगा तो देह दिखाई देगा। अभी अगर पहचान वाला घूम भी रहा है तो दिखाई नहीं देगा। हम प्रैक्टिस कौन सी कर रहे हैं? मस्तक मणियों को देखने की। मस्तक में विराजमान वो चमकती हुई मणियाँ हैं, वो विश्व कल्याणकारी मणियाँ हैं, उनको देखने की प्रैक्टिस कर रही हैं। और जो हम अपरोक्ष रूप से देखते हैं उसमें बहुत ताकत होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम अवस्था अव्यक्त अवस्था है। अव्यक्त का अनुभव वही कर सकेंगे जिन्होंने लंबे समय से अव्यक्त स्थिति में रहने की प्रैक्टिस की है। तो अव्यक्त कैसे बनेंगे? अभी मान लो यहाँ हम बैठे हैं और हमको घर की याद आ रही लौकी की, तो उसमें में हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे? ये सोचना है कि यहाँ की सारी एनर्जी लेकर मैं घर में भर रही हूँ, जो याद आ रहा है उसमें परमात्मा शक्तियाँ भर रही हूँ, उसके जीवन का शुद्धिकरण हो रहा है, जिससे हमारी ज़्यादा अटैचमेंट है उसमें हम परमात्मा शक्तियाँ भर रहे हैं, और उसकी अटैचमेंट परमात्मा के प्रति हो रही है। हर चीज़ को परिवर्तन करना है। खेल सारा हमारे संकल्पों का है। जो भी संकल्प आए हमको, उससे हमको घबराना नहीं है, उसका समाधान करना है, उसको परिवर्तन करना है, नई दिशा देनी है उसको। क्योंकि हिसाब किताब तो हमारे सामने आएगी, उससे हम किनारा नहीं कर सकते। और अगर हमने किनारा करने का प्रयास किया तो वो सूक्ष्म हिसाब किताब का बोझ हमारे प्रति दिन प्रतिदिन और चढ़ता जाएगा। हिसाब किताब तो क्लियर करना ही करना है, तो क्यों ना हम सकारात्मक परिवर्तन करके, संकल्पों का परिवर्तन करके उनको परमात्म पालना का अनुभव कराएं। अब हैं तो भगवान के बच्चे हैं ना सारे, उनको अनुभव कैसे कराएंगे? अब वो ज्ञान सुन नहीं रहे हैं, खाना पीना उनका शुद्ध नहीं है, और अनुभव तो कराना, बाबा ने कहा ना तुम्हारे जीवन से उनको अनुभव। तो हम मधुबन में आए हैं, सेवा करने आए हैं, ये बहुत एक गोल्डन चांस है। जो योग घर में नहीं कर सकते यहाँ कर सकते हैं, जो प्रयोग घर में नहीं कर सकते यहाँ बैठे बैठे शक्तिशाली प्रयोग करने, क्योंकि हम सभी अभी पावर हाउस के पावर हाउस पर बैठे हुए हैं। मधुबन क्या है? पावर हाउस है ये। तो यहाँ से जितनी हम शक्ति भर के लौकिक घर में या जहाँ भी हैं, जो भी हमारे जीवन में स्मृतियाँ जिनके साथ साकुताव है, उनमें अगर भरते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे बंधन कटते जाएंगे। उधर ज़्यादा आकर्षण नहीं होगी, नहीं तो वही संकल्प हमारे बार बार चलते रहेंगे, वही खींचते रहेंगे, वही खींचते रहेंगे। तो यहाँ बैठे बैठे घर को क्या बना देना, एकदम पावर हाउस बना देना उसको भी। यहाँ से जैसे आप जाएंगे तो ऐसे दिखें कि सामने वाला ही फरिश्ता दिखाई दे, जो कुछ हो रहा है ना। हाँ होता है, जो व्यक्ति पहले क्रोध करते थे सामने से जैसे आप पर फूल बरसाए, फूल पर फूल लेकर आपका स्वागत के लिए खड़ा हो कि देवी जी अवतरित हो गई है इधर भी, है ना। और ये सच में दिन प्रतिदिन बदलाव तो हो ही रहा है, क्योंकि आत्मा अंदर से बड़ी प्यासी हैं, बड़ी दुखी हैं, उनके दुखों का हरण कौन करेगा, उनकी प्यास कौन बुझाएगा, उनको शांति कौन देगा? हमारा जीवन ही शांति देने वाला है, बाबा कहते हैं तुम एक एक बच्चा शांति दूत हो। तो बाबा कहते हैं फरिश्ते पन की एक दो को बधाई दो, कोई कैसा भी है लेकिन सबको क्या देखो, फरिश्ता देखो। फरिश्ता था सदा उड़ने वाला। उड़ेगा कौन? जिसने अपने मन बुद्धि की सूक्ष्म रस्सियों को काट दिया होगा। अगर मन बुद्धि की सूक्ष्म रस्सियां अभी भी हमारी बंधी हुई हैं, है ना, चाहे वो संबंधों से अटैचमेंट है या आसक्ति है खाने पीने से है या घूमने फिरने से है या डिजिटल वर्ल्ड से है, तो फिर हम उड़ नहीं पाएंगे। उड़ेंगे तभी जब हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। अगर रस्सियों से बांधा रखा है संकल्प ऐसे वैसे जो हमको नहीं करने चाहिए, उन संकल्पों को रचने की आदत पड़ी हुई है, तो फिर उड़ेंगे कैसे? इसलिए बाबा कहते डबल लाइट फरिश्ता, सबको फरिश्ता देखो, स्वयं को भी फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सब प्रकार से व्यर्थ से मुक्त, सब प्रकार के दे के संबंधों से, दे के रिश्तों से, दे के कर्तव्यों से, ऊपर उनसे। हमारे कर्तव्य बहुत ऊंचे हैं, हमारे कर्तव्य इतने ऊंचे हैं वो संसार की आत्मा नहीं कर सकती है। संसार की सब आत्माओं को ठिकाना दिखाना, ठिकाने उनको राहत देना, उनको रास्ता बताना, घर वगैरह परमात्म प्यार का अनुभव कराना, कोई साधारण कर्तव्य थोड़े नहीं हमारे। तो अगर कर्तव्य हमारे महान है तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? महान होनी चाहिए। तो एक एक संकल्प में हमको ताकत भर देनी, बल भर देना है, और एक ही संकल्प में बैठ के उसको लंबे समय तक उसका उपयोग करना, प्रयोग करना। जैसे बताया ना, एक ही सोमान ले लो, है ना, कोई जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, अब लंबे समय तक इस सोमान का अभ्यास करते हैं लेकिन कुछ को खास अनुभव नहीं होता है, अब उसको नए तरीके से यूज करना है। तो कैसे करेंगे? मैं परमात्म शक्तियों की खान हूं, और खान कभी खुटती नहीं है, है ना। तो ऐसे महसूस करना जैसे परमात्म शक्तियां मेरे पूरे शरीर में घूम रही हैं, बहुत फास्ट गति से घूम रही हैं, अंग अंग में घूम रही हैं। वो परमात्म शक्तियों का करंट जैसे फुल फोर्स पूरे वेग से पूरे शरीर पूरी बॉडी में घूम रहा है, और वो ही करंट जैसे सारे घर में घूम रहा है, वो ही करंट जैसे मोहल्ले में घूम रहा है, वो ही समाज में, शहर में, देश में, विश्व में घूम रहा है। बाबा कहते हैं विश्व ग्लोब को इमर्ज करो, बैठ जाओ उसके ऊपर, और जैसे परमात्म शक्तियों का करंट स्वयं जैसे पावर उस ऊपर से आ गया और मेरे सिर पर बैठ गया है, और वो सारा करंट मुझ में फ्लो हो रहा है, और पूरा जो मेरे सामने विश्व का ग्लोब है सारा उसको जा रहा है। इमेजिनेशन करनी है लंबे समय तक, और उसका साथ साथ में चिंतन करना है। जैसे एक एक शक्ति को देखना आंखों से कि वो शक्तियां जा रही हैं, और देखना वो आत्माएं मुक्त हो रही हैं, बुराइयों से मुक्त हो रही हैं, व्यर्थ से मुक्त हो रही हैं, उनमें जैसी एक नई चेतना शक्ति जागृत हो रही है, उनमें जैसे खुशी की लहर आ गई है, उनमें जीने का एक जज्बा आ गया है। नहीं तो संसार में जीने से लिए बड़ा जीवन से तंग हो गए लोग, चेहरे पर खुशी दिखती नहीं है, कभी कभी हमारी खुशी भी गायब हो जाती है, उनको ज्यादा याद कर लेते हैं। भगवान को याद करने के सिवाय उनको ज्यादा याद करते तो हमारी खुशी पर भी असर पड़ जाता है। आय का स्लोगन क्या था? यही तो था, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करना ही सच्चे सेवादारी है। तो देखो सारे ज्ञान का वास्तव में सार तो यही है कि जीवन हमारा खुशनुमा कब होगा? जो परमात्म प्राप्ति हमको मिली है जब वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में दिखाई देंगी, तभी तो खुशी आएगी, तभी तो संतुष्टता रहेगी, नहीं तो खाली खाली रहेगा। तो सबको एक दो को बधाई देनी है, कौन सी? फरिश्ता बनने की बधाई। और बधाई कौन सी देनी है? जो कड़वापन है हमारे अंदर, कौन कौन सा व्यर्थपन है और कड़वापन कौन कौन सा है? बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे होते हैं ना, पुराने संस्कार बहुत अच्छे लगते हैं, छोड़ते नहीं है। तो पुराने संस्कार कौन कौन से हैं? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, गपशप मारना और कमियां देखना, फिर दूसरों को बताना, उनकी खाली देखना थोड़ा, दूसरों को बताना। तो बाबा ने कहा इसकी प्रतिज्ञा करो, नाम व्यर्थ देखेंगे। देखो पिछले चार संडे से लगातार आ रहा है, ना व्यर्थ देखेंगे, ना सुनेंगे, ना वर्णन करेंगे। ये अखंड प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन प्राण ना जाए, प्रतिज्ञा ना जाए। तो ऐसी हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। और छोटी छोटी बातें हमने देखा, छोटी छोटी बातें ही हमारे पुरुषार्थ को खत्म करती हैं, हमारी खुशी को छीन लेती हैं। और वो सब जो कमी कमजोरियां वो हम सबको पता है कौन कौन सी हैं, और उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। बाबा भी नहीं छुड़ाएगा, बाबा ने छुड़ाने के लिए ताकत दे दी है, लेकिन करना अपने को पड़ेगा। और वो बार बार रिवाइज करनी है। प्रतिज्ञा बाबा कहते हैं एक बार करो तो उसको बार बार रिवाइज करो, उसको रियलाइज होगा फिर बाद में। हम प्रतिज्ञा कर तो लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं। तो पिछले संडे भी बोला था, उसके पिछले संडे भी बोला था कि आज से फिर प्रतिज्ञा करेंगे। कौन सी? कि मोबाइल, एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं देखेंगे, जितना काम का होगा उतना देखेंगे। क्योंकि मोबाइल भी एक छोटे बच्चे की तरह ना, छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं ना, ऐसे मोबाइल भी बहुत प्यारा लगता है। मोबाइल पर बेचारे पर दोष देते रहते हैं, दोष होता है अपना लेकिन दोष देते हैं मोबाइल को। वो तो हमको वरदान के रूप में मिला हुआ साधन है सेवा करने के लिए, लेकिन हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो एक एटीट्यूड बन गया हुआ है दूसरों को दोष देने की, एक वृत्ति बन गई है दोषारोपण वृत्ति। तो दोष हमको दूसरों को नहीं देना, स्वयं में दोष जांचने, कौन कौन से दोष हैं, जो कड़वापन है, जो हमारे जीवन से नहीं निकल रहा है, उसको निकालने का प्रयास करना है, प्रतिज्ञा करनी है। हमको क्या फायदा हो रहा है उस चीज़ से, कितना नुकसान हो रहा है, हमारा कितना टाइम वेस्ट चला जा रहा है। जो हमारे जीवन में पुरुषार्थ से इतनी शक्तियां जमा की थी, सारी खत्म होती जा रही हैं। बाद में हमारे हाथ में क्या आएगा? पश्चाताप के आंसू। और सबसे ज्यादा पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा, संसार की आत्माओं को पश्चाताप नहीं होगा। कि भगवान को प्राप्त करने के बाद भी जो हमको कर लेना चाहिए था और हमने नहीं किया था, और कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, कितना पश्चाताप हो। एक दिन का ही जांच लो सवेरे से लेकर रात्रि तक, अगर कोई भी श्रीमत की अवज्ञा होती है तो कैसे अंदर मन खाता है, योग लगता है फिर? भले थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन जो रस मिलना चाहिए, जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो शरीर की हलचल समाप्त होनी चाहिए, जो मन एकदम स्थिर हो जाना चाहिए, हलचल में आ जाता वो। तो छोटी छोटी सूक्ष्म अवज्ञाएं हमें स्वयं श्रापित करती रहती हैं, हम स्वयं ही स्वयं अपने आप को श्रापित करते रहते हैं, अपने ही हम दुश्मन बनते रहते हैं, दुश्मन हमारा कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, संसार में भी कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है, अपना शत्रु है। तो संसार में हमारा दूसरा कोई शत्रु नहीं है, हम खुद ही स्वयं के शत्रु बने हुए हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, वो स्वयं को जांच करनी है और उनको निकालने का प्रयास करना है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे पुरुषार्थ को खाती रहती हैं। फिर बाबा को हंसी आती है, कौन सी? के सो विश्व परिवर्तन करने का जिम्मेवारी उठाई है लेकिन स्वयं का परिवर्तन नहीं कर पा रहे, माना कुछ तो है ना हमारे में जो नहीं कर पा रहे। तभी तो बाबा हमको सचेत करते रहते हैं। तो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए कुछ खुद प्लानिंग बनानी है, एक साप्ताहिक प्लानिंग या वन डे प्लानिंग, एक दिन की बना, लंबी नहीं बनाओ, एक एक दिन की बनाओ कि आज के दिन में हमको ये वाला पुरुषार्थ करना है। मुरली में जो कि बातें कही जा रही हैं, चार पांच बातें निकाल के आज मुझे ये धारण करनी है, बार बार मन बुद्धि में वो रिवाइज करना है, या वरदान श्लोक याद रखे उसको बार बार बुद्धि में घुमाना है। और जितना हम ज्ञान को बुद्धि में घुमाते हैं उतना मन बुद्धि स्वच्छ होता है, प्योर होता है, और पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान रत्न ठहरते हैं। बाबा कहते हैं ना, अगर ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है तो अभी भी कचड़ा भरा हुआ है अंदर में, तभी तो धारण नहीं हो रहे हैं। अगर बुद्धि खाली हो, स्पष्ट हो, पवित्र हो, ज्ञान धारणा हो, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और ज्ञान बुद्धि में याद नहीं रह रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि अटकी हुई है। तो हमें स्वयं को ही स्वयं पर रहम करना है, दूसरा कोई रहम नहीं। बाबा को भी जितना हमारे ऊपर रहम करना था वो कर दिया, अभी भी फिर भी थोड़ा बहुत बाबा रहम कर रहे हैं, जो हमको एक टाइम दे रहे हैं, थोड़ा पुरुषार्थ का टाइम दे रहे हैं। पढ़ाई सारी पढ़ा दी है, उसको रिवाइज करना है। अभी तो केवल थोड़ा सा जो बीच बीच में मुख्य मुख्य जो प्रश्न उत्तर जैसे बच्चे कैसे देखते हैं किताबों में अंतिम समय में परीक्षा के टाइम में, वैसे ही है अभी। ऊपर से देख लिया, अब तो उसको आत्मसात करना है, जीवन में लाना है, उसको अंगीकृत करना है, उसका अनुसरण करना है, उस ज्ञान को अपने संस्कार बनाने हैं। तो प्रतिज्ञा करनी अपने आप से, तो हम विश्व परिवर्तक हैं। और क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में, बाबा खेल देखते हैं, कौन सा टीवी है ना बाबा के पास, कौन सा टीवी है, हाँ बतन में टीवी है, बाबा कहते लेकिन आप देखने नहीं चालू कर देना, माना देखते हैं बच्चे तभी तो बाबा कह रहे हैं। मिक्की माउस का खेल, कभी शेर बन जाते, कभी कुत्ता बन जाते, कभी बिल्ली बन जाते, तो हमारे जीवन में ऐसा खेल ना चलता रहे। अर्थात जो भी हम देखते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज बुद्धि में छप जाती है, वो जो पढ़ाई पढ़ेंगे याद ही नहीं रहेगी, लेकिन अगर छोटा सा क्लिप देख रहे हैं ना जिंदगी भर भूलेगा नहीं वो। तो हमें खुद ही ऐसे नए नए दृश्य निर्माण करने हैं, बाबा के साथ सर्वसंबंधों का अनुभव करना है। कहने में तो कह देते हम सर्वसंबंधों का अनुभव करो, लेकिन एक एक संबंध का एक दिन में एक ही भले करो। जैसे आज बाबा मेरा टीचर है, अब टीचर के प्रति हमारी कितनी समर्पणता है, उसके साथ हमारा कितना प्यार है, मैं उसके प्रति कितना आज्ञाकारी हूँ, उसका कितना मैं होमवर्क कर रहा हूँ, सारे दिन केवल टीचर के साथ ही संबंध निभाओ। नहीं तो क्या होता है, एक मिनट में बैठे बाप है, टीचर है, सदगुरु है, सखा है, साजन है, बस पूरा हो गया काम। ऐसे नहीं होगा, एक एक संबंध को, एक में डूब जाएंगे सारे संबंध अपने आप पीछे हो जाएंगे। घर में अगर किसी बच्चे का अपहरण कर लो तो पूरी फैमिली कैसे पीछे आ जाती है, आते कि नहीं आती है। तो अगर बाबा को मैं एक ही संबंध से अगर डूब जाए उसके प्यार में, तो सारे संबंधों का अनुभव होने लगेगा और फिर हमको संसार का कोई भी संबंध खींचेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं एक दो को गिफ्ट दो, कौन सी, गुणों की गिफ्ट, स्नेह की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। गिफ्ट से कोई मालामाल नहीं होता, स्नेह से मालामाल होता है। तो हम परमात्म स्नेह की इतनी मूर्ति बन जाएं, इतनी हमारे में मिठास आ जाए कि दूसरों को हमें मुख से कहने की जरूरत ना पड़े, केवल अंत में केवल दो ही बोल बोलने पड़ेंगे कि आत्मा हो आप और परमात्मा को याद करो, ज्योति बिंदु बनकर ज्योति बिंदु बाप को याद करो, बस एक सेकंड में उनको अनुभव हो जाएगा। लेकिन कब, जब लंबे समय से वो प्रैक्टिस हमने की होगी। अगर मैंने खुद ही प्रैक्टिस नहीं की है तो हम जितना मर्जी बोलते रहे जीवन में कोई असर नहीं होने वाला है। असर उसी की बात का होगा जो प्रैक्टिकल में करेगा। तो ऐसे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य होते हैं जो हमारे जीवन को मिठास से परिपूर्ण कर देते हैं। तो एक एक महावाक्यों को, क्योंकि सारी मुरली भले याद ही रहे, 5-7 लाइनें भी पकड़ लो और दिन में उसको बार बार रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो, और आपस में चर्चा करो, उस पर चिंतन कीजिए, वो हमारे संस्कार बन जाएं। ओम शांति।